आज जो हम आपके लिए सब्जेक्ट यानी कि विषय लेकर आए हैं वो है फिजिक्स, और हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर उदयना मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू मैम।
तो मैम, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटी, तो मैं चाहूंगी मैम शुरू कीजिए प्लीज चर्चा को।
जी मैम। हेलो लर्नर्स, इससे पहले कि हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द गुरुत्वाकर्षण, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अपने साथ छोटी छोटी चीजें जो आपके पास अप्रोचेबल होंगी, अभी आसपास में होंगी, वो लें, जैसे कि इरेजर हो गया, शार्पनर है, पेंसिल है, और वन बाय वन पहले आप इरेजर लीजिए, इसे जरा थोड़ा सा थोड़ी सी फोर्स के साथ ऊपर कोई और उछालिएगा और ऑब्जर्व करिए कि व्हाट हैपेंड, देन डू इट अगेन विद द शार्पनर एंड डू इट अगेन विद द पेंसिल। आप दो तीन ऑब्जेक्ट्स के साथ, मोर देन दो तीन ऑब्जेक्ट्स से, मतलब उनसे ज़्यादा भी, आप जितना भी चाहके उन्हें थ्रो करके ऑब्जर्व करना चाहें, आप ऑब्जर्व करिए कि होता क्या है। आप देखेंगे कि आप तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वेदर इट इज़ ए स्टोन, वेदर इट इज़ ए शार्पनर, वेदर इज़ ए रेजर, पेंसिल, कुछ भी है, तो आप उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मगर कुछ ऊंचाई के जाने के बाद आपकी कितनी फोर्स है, उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जाएगा, और एक ऊंचाई पर जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो पेड़ पर पत्ते जैसे छूटते हैं या फ्रूट जैसे छूटता है, तो वो सीधा धरती पे आके गिरता है, कहीं ऊपर आसमान में क्यों नहीं चला जाता। इवन कि जो एरोप्लेन आसमान में उड़ते हैं, वो भी क्रैश जब हो जाते हैं, एक्सीडेंटल जब कोई हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और वो तब वो भी सारा मैकेनिज्म छोड़कर नीचे की तरफ गिरते हैं और नीचे धरती पर आके गिरते हैं। इसी तरह से अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जो पक्षी जो हैं आपके इस पे नभचर जो होते हैं, जो आसमान में घूमते हैं, वो भी अगर कभी चोट लग जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या पेन में होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं और नीचे ही गिर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? कभी आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हमेशा जो है फल जो है वो नीचे को क्यों गिरता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरता है? मैंने एक बार दैनिक जीवन में विज्ञान की जब बात करी थी तो हमने कहा था कि विज्ञान का सिंपल सा सिस्टम है, आप जितना क्वेश्चन करेंगे आप उतने आंसर्स पाएंगे, और वो सारे के सारे आंसर्स आपको विज्ञान में मिलेंगे। आपके सारे ही जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो किसी न किसी तरह किसी न किसी विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। ये घटना भी आपके विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, भौतिकी का है, और जिस वजह से जो चीजें हम ऊपर फेंकते हैं या जो चीजें ऊपर घूम रही होती हैं वो भी एक्सीडेंटल कंडीशंस में नीचे आती हैं, उसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज अ गुरुत्वाकर्षण बल। और आज हम इसी गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, इसी ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे, और ये हमारा सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स का मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 5 है। मैं अपने शिक्षार्थियों से कहना चाहूँगी कि अच्छी समझ के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि वो अपने साथ अपनी किताब रखें, क्योंकि कुछ टर्म्स जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको शायद अपने बुक में वो डेरिवेशन देख के, वो चीज़ें देख के मेरी बात आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन से, जिसमें कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या और ग्रेविटेशन का नियम क्या है। फिर हम लोग ग्रेविटेशन के द्वारा जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, उसकी गणना कैसे करेंगे, और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे क्या पृथ्वी की केंद्र से ऊंचाई या गहराई या फिर उसके अक्षांश या लैटिट्यूड में परिवर्तन के कारण क्या गुरुत्वीय त्वरण में कोई अंतर आता है या नहीं आता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मास एंड वेट की। ये हम लोग आपका ग्रेविटेशनल पार्ट 1 होगा। सेकेंड पार्ट में हम इसका रेस्ट पार्ट करेंगे. हम लोग, मैंने आपको जैसे भी बताया, और अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है या आपने कोई इमेजिन किया है कि किस तरह से आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन जब क्रैश होता है तो किस तरह से धरती पे आके गिरता है, उसका जो रीजन है दैट इज अ गुरुत्वाकर्षण बल. और जो गुरुत्वाकर्षण बल का है ये जो है वो हमारा 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने दिया था. और उन्होंने ही फाइंड किया था कि जो भी चीजों के, कोई भी चीज है जो पृथ्वी की कर और आकर्षित होती है, और पृथ्वी की ओर आकर्षित होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है. जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि आप जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिमिलरली एक दिन जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एकदम से सेब के, क्योंकि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा. तब उनके क्वेश्चन आया कि सेब नीचे क्यों गिरा. यही आपका प्रश्न था जो उन्होंने देखा. फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया क्योंकि सेब और बाकी चीजें भी, जो भी और फल हैं, पत्ते हैं या कोई भी चीज हम ऊपर गिरा रहे हैं, वो सब के सब जो भी हैं वो नीचे की ओर गिर रहे हैं. अब नीचे की ओर गिरने के लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए. तो उन्होंने देखा कि वो क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से वहां पे आपका जो है वो धरती की ओर गिर रहा है. तो वो उन्होंने बाद में जो आपका नियम बनाया, जो उन्होंने पूरी स्टडी करी, तो उन्होंने जो स्टडी करी उस स्टडी के अंतर्गत उन्होंने ये पाया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक कारण है जिसकी वजह से हर एक चीज जो है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है. अब देखना ये था कि जो पृथ्वी की तरफ आकर्षण है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है वो, उस ऑब्जेक्ट का पृथ्वी की तरफ आकर्षण जो है वो किस नियम के आधार पे होता है. तो उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो उन्होंने डिफाइन किया, दैट इज एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद ए फोर्स विच वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. आपने अगर बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम की अपने हाथ में ले रखी है तो आप देखेंगे कि आपकी बुक में पेज नंबर 113 पर उन्होंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है कि एवरी पार्टिकल. अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कोई चीज जो है वो आपकी सिर्फ कोई भी चीज हम ऊपर की ओर फैला रहे, फेंक रहे हैं तो वो नीचे की ओर आकर्षित हो रही है. अब यहाँ पे आप नियम में देखिए इसने क्या कहा है, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद ए फोर्स विच वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. यूनिवर्स मीन्स कि आउट ऑफ द अर्थ, अगर हम पृथ्वी से बाहर भी चले जाते हैं या पृथ्वी के किसी कोने में भी चले जाते हैं तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अन्य सभी कणों को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है जो उन दो बड़ों कणों के, जिन दो कणों में आपस में, देखिए एक तो हो गया कि हम सारे ही कण एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मगर हम किन्हीं दो कणों की अगर बात करें तो दो कणों के अगर बीच की हमने फोर्स चेक करनी हो तो वो कैसे होगी, वो दो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं. मैथमेटिकली आप देखिए आपका लिखा हुआ है इन्होंने F is directly proportional to M1, M2 divided by R square. F is a force, वो बल है जिस बल के द्वारा वो वस्तुएं आपस में आकर्षित हो रही हैं. किस पे डिपेंड हो रही हैं? दोनों कणों के मास पर. अगर आपका मास, एक कण का मास M1 है और दूसरे कण का मास M2 है तो उसके प्रोडक्ट के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज 1/r² और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो भी आपके दो कण हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में हो जाएगा. अब हमें पता है कि व्हेन वी राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह होता है, उसे हम लोग इक्वल टू में जब भी कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास देखिए इक्वेशन है 5.1, जिसमें लिखा गया है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूं एफ इज द फोर्स, एम वन इज द मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एम टू इज द मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, एंड जी इज नोन एज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं. ये आपका थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है. ये बहुत ही छोटा होता है इसका, और जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है इट रिमेन्स द सेम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. वो दो कणों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स में कहीं भी होंगे, दैट विल बी रिमेन द सेम. अगर हम लोग इसको और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि यदि पृथ्वी पर नियत दूरी पर रखे दो कणों के बीच लगने वाला बल F है, तो ब्रह्मांड में अन्यंत्र कहीं भी इन दो कणों को यदि समस्म दूरी पर रखा जाएगा तो उनके बीच लगने वाला बल F ही होगा. मान लो कि आपने दो ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ दिल्ली में रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे अगर हम लोग आउट ऑफ द अर्थ कहीं भी यूनिवर्स में रख देंगे, या यहाँ दिल्ली में ना रख के अमेरिका में रख दें या कहीं भी रख दें, और डिस्टेंस शुड बी सेम. मेन कंडीशन क्या है कि उनका द्रव्यमान सेम होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो आपका जो बल होगा वो सेम रहेगा. मगर आपका अगर डिस्टेंस चेंज हो जाता है, आपका द्रव्यमान चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली द फोर्स विल बी चेंज्ड, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने बात करी है कि M1 द्रव्यमान का कण है और M2 दूसरे द्रव्यमान का कण है. तो आपका हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से क्या है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स द अदर पार्टिकल. इसका मतलब कि M1 जो है वो M2 को अट्रैक्ट कर रहा है और M2 जो है वो M1 को आकर्षित करता है, और ये दोनों का आकर्षण जो है वो कणों की स्थिति को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, तो और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स. अब अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करें तो आपको पता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. तो आपका जो फोर्स है उसका कोई ना कोई दिशा भी होगी. तो जब हम लोग एक फोर्स को चेक कर रहे हैं कि M2 पर M1 का जो फोर्स है, अगर हम उसे F12 नाम दे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी M1 की M2 की टुवर्ड्स होगी. तो दैट इज जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R12, और आपका यूनिट वेक्टर है दैट इज R12. मगर आप देखेंगे कि जैसे ही आपका M2 का बल लगाएंगे हम M1 पर, तो आपका जो है वो क्योंकि वेक्टर है आपका उसमें डायरेक्शन है, तो अब जो है आपकी वो डायरेक्शन चेंज होगी. देखिए आप जब M1 जो M2 को फोर्स लगाएगा तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो वो आप देखिए वो किस तरफ को मूव कर रही है, वो फोर्स किस तरफ को लग रहा है आपका राइट टू लेफ्ट. जब आपका M2, अगर आप फिगर नंबर 5.2 में ध्यान देखेंगे तो देखिए आपका M1 आपका लेफ्ट साइड में है और M2 आपके राइट साइड में है. M1 जो M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो आपका लेफ्ट टू राइट को अट्रैक्ट करेगा, जबकि M2 जब M1 को अट्रैक्ट करेगा तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट अट्रैक्ट करेगा. तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी फोर्सेज की. तो F1 जो F12 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस F21. तो हम कह सकते हैं कि बल F12 और F21 परिणाम में बराबर हैं, वो इक्वली होंगे. जितना M1 M2 पे लगाएगा उतना ही M2 M1 पर लगा रहा है, मगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाएंगे. और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, जब हमने थर्ड चैप्टर में न्यूटन के लॉज की बात करी थी तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि आपके हर एक एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, हर एक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है. तो यहाँ पे भी जब हम बात कर रहे हैं कि एक बल, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे बल लगा रहा है तो उसके रिएक्शन में दूसरा ऑब्जेक्ट उस पे बल लगा रहा है जो कि आपका विपरीत दिशा में है. तो आपका जो है ये सारे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, मगर दे आर इक्वल बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. हम लोग यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम का उपयोग कर रहे हैं और जी का मान जो है वो इतना कम था कि जब ये नियम दिया गया था तब न्यूटन जो है और उसके पैरेलली जब उस बहुत सारे लोग इस पे शोध कर रहे थे तो वो इसका जो है वो मान नहीं कैलकुलेट कर पाए थे. जस्ट अबाउट 100 years बैक आफ्टर द न्यूटन, 100 सालों के बाद कैवेडिस ने ज्ञात किया और जी का मान जो अभी स्वीकार्य है वो है आपका 6.67 × 10⁻¹⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. अब आप देखिए कि 10⁻¹⁻ तो 10⁻¹⁻ इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो इसका मान इतना छोटा है कि हम इसे महसूस ही नहीं कर पाते हैं. इतना कम होने के कारण ही दो साधारण वस्तुओं के बीच में इसका मान जो है वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते. वी कैन नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज कि देयर इज ए वेरी वेरी स्मॉल जी. नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आपने अभी तक क्या नोट किया, अभी तक हमने बात करी है कि आपका जो वस्तु हमने ऊपर गिराई वो वस्तु जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आई. हमने जानबूझ के गिराई तब भी नीचे आई, वो नेचुरल वे में गिरी तब भी नीचे आई, और वो जो आपका अगर ऊपर से किसी एक्सीडेंटल कंडीशंस में गिरी हैं तब भी वो नीचे ही आई हैं. और क्योंकि वो आपका दोनों के वस्तुओं के गुणनफल के बराबर होती हैं तो नेचुरली क्योंकि आपका पृथ्वी का गुणन जो द्रव्यमान है आपका वो आपका बहुत ज़्यादा है इसलिए वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है दूसरी वस्तु को क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है. अब आप हमें पता है कि जो हमने न्यूटन का दूसरा नियम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने एक डेरिवेशंस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज द बल, एम इज द द्रव्यमान और ए इज द एक्सेलरेशन. कि जो भी कोई फोर्स है वो आपके द्रव्यमान और उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. गुरुत्व बल अर्थात पृथ्वी के समीप रखी वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी द्वारा आरोपित बल वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है. देखिए आप नोटिस करिए, जब आपने वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी तब तो आपने उसमें खुद कोई ना कोई बल लगाया, आपने उसे पुल किया, पुश किया, थ्रो किया तो वो ऊपर गई. मगर ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आ रही है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा तो वो कैसे नीचे आ रही है और उसका एक्सेलरेशन क्या है और वो किस गति से नीचे आ रही है वो जानना जरूरी है. तो जो आप पृथ्वी हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बल लगा रही होती है तो वो उसमें बल के द्वारा ही उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होती है और उस गुरुत्व बल के कारण ही हम इस जो क्योंकि ये गुरुत्व कारण बल के कारण हो रहा है इसलिए इस त्वरण को हम लोगों ने नाम दे दिया दैट इज द गुरुत्वीय त्वरण और हम इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी भी कहते हैं. अब आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है जो कैपिटल जी था दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, वो आपका सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक था जो कि आपका जिसका मान 6.67 × 10⁻¹⁻ था और जो कि बहुत वस्तुओं पर बहुत मतलब ऑर्डिनरी वस्तुओं पर हमें महसूस भी नहीं होता. अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अ स्मॉल जी एंड दैट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की बात करते वक्त मैंने सबसे पहले बात करी थी न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में जो कि बताता है एफ इजकल टू एम ए. एट द सेम टाइम वी नो एफ इजकल टू जी एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दैट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. स्मॉल एफ जो है वो आपका पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है. कैपिटल एम जो है वो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर इसकी त्रिज्या है. एफ जी इज इक्वल टू एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 5.6 है. उस वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है और जो आपका एफ इसका टू एम है वो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है. अगर हम 5.5 और 5.6 को देखें तो बोथ आर इक्वल. अगर बिकॉज वी नो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड आर इक्वल. और ए आपका एक्सेलरेशन है और यहाँ पे क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ए कैन बी रिप्लेस बाय द जी. और जैसे ही हमने ए को जी से रिप्लेस किया देन द इक्वेशन बिकम्स आर एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. और क्योंकि एम जो है वो आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो एम और एम आपके खत्म हो जाते हैं और बी गॉट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5.7. ये आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण है और दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. जो आपकी पृथ्वी की सतह पर अगर जी का मान हम ज्ञात करते हैं इन जनरल दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और आपका किसी भी ग्रह या उपग्रह के लिए हम लोग उसका जी का मान ज्ञात कर सकते हैं. अगर वहां पे आपका कोई एटमॉस्फेयर है और उसका हमें ग्रह का मास और उसकी त्रिज्या पता हो तो हम लोग वहां पे उसका जो है वो ये जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. आप अपनी पृथ्वी का जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द मास ऑफ द अर्थ एंड वी नो द रेडियस ऑफ द अर्थ. वो हमारे स्टैंडर्डाइज है और यू कैन गेट इट एंड यू कैन फाइंड इट तो आपको मिल जाएंगे. अब देखिए आप अगर इक्वेशन नंबर 5.7 को ध्यान से देखेंगे तो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल जी दैट इज द कांस्टेंट आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है. एम इज द मास ऑफ द अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर इज द इट्स रेडियस दैट आर आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है. तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने जैसे आपको बात करी थी कि आप शॉर्पनर गिरा दीजिए आप रेजर गिरा लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि कोई एरोप्लेन आपका ऊपर से एक्सीडेंटली डाउन आ रहा है या कोई वर्ड आपका चोट लग गई है तो नीचे गिर रहा है तो किसी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे नहीं है इक्वेशन में. तो आप इक्वेशन को देख के कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी पिंड पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता जबकि वो किस पे डिपेंड करेगा उस आपके ग्रह के या जो बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका जिसके जिसका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके मास और उसके रेडियस के बराबर. तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पृथ्वी का मास और पृथ्वी की त्रिज्या डिपेंड करती हैं. तो जब हम बात करें कि किसी पिंड पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता इट मीन्स कि आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो हैवी है चाहे वो आपका हल्का है वो समान गति से नीचे गिरेगा. मगर यहाँ पे आप चीज एक कॉन्सेप्ट और माइंड में रखें कि अनटिल अनलेस उस पर कोई और फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही हो. तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसके लिए पहले जो साइंटिस्ट थे उनमें बहुत मतभेद था क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि भारी वस्तुएं जल्दी नज़दीक नीचे आएंगी जबकि हल्की वस्तुएं देर से आएंगी. तो आपको अच्छे से पता है कि जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो ये किया गया था कि पीसा की मीनार से दो गेंदों नीचे फेंकी गई थी जिनका अलग अलग द्रव्यमान था. एक भारी द्रव्यमान की गेंद थी और एक आपके हल्के द्रव्यमान की गेंद थी. मगर जब दोनों को नोट किया तो दोनों का नीचे पहुंचने का समय जो था वो सेम था और दोनों ने एक ही टाइम पे नीचे उसको टच किया. मगर आप अगर कोशिश करेंगे कि आप एक पेपर और एक गेंद नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई डिफरेंस हो क्योंकि पेपर इतना हल्का है कि उस पे जो हवा का बल है वो भी कार्य करेगा, तो जो हवा के बल के कार्य करने की वजह से उसकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, इसलिए उनके पहुंचने में परिवर्तन हो सकता है। तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर दोनों ही चीज़ों पे कोई और तीसरा कोई बल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही काम कर रहा है, तो वो आपका नीचे एक साथ ही पहुँचेगा। अब हम जब बात करते हैं कि गुरुत्व के प्रभाव के कारण वस्तुएं ऊर्ध्वाधर नीचे पृथ्वी की ओर गिरती हैं, छोटी ऊंचाइयों के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिक नहीं बदलता। अगर आपकी ऊंचाई चेंज हो रही है तो आपका ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है जी में, और गहराई के साथ कैसे परिवर्तन होगा, लैटिट्यूड के साथ परिवर्तन कैसे होगा। मगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका ऊंचाई छोटी है तो वो निग्लिजिबल हो जाती है, उस केस में आपका नहीं बदलता है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, आप उनको ए को जो है वो जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहाँ पे भी आपकी फाइनल पोजिशन है, वेलोसिटी है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जी आपका एक्सेलरेशन है, टी इज द टाइम, एस इज द डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। मैं सबकी नोटेशन पहले भी बता चुकी हूँ, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड अब टी इज द टाइम, एस इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जी जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी दिशा पर गति कर रही हो, उस वस्तु पे लगने वाला त्वरण जो होगा वो आपका नीचे की ओर होगा, और जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं, दैट इज नोन एज अ मुक्त पतन, वो नीचे ही आएगा। और जब भी हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन पुल की बात करेंगे या आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात करेंगे, तो आप जब भी नोट करेंगे तो जो त्रिज्या है आपकी वो काउंट होगी आपकी, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जो आपका सेंटर है वही हम, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं तो हम लोग उसे अलग अलग कैसे लेंगे, तो उसे कांस्टेंट करने के लिए हम लोगों ने एक केंद्र मान लिया, और हर एक वो वस्तु जिसका केंद्र है हम उसी केंद्र से उसके डिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ, जिनका जो आपकी जमातीय रचनाएं ऐसी हैं जिनका केंद्र है उन को तो हम केंद्र से ले लेते हैं, और जिनकी जमातीय रचनाएं केंद्र में नहीं होती हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ज्ञात करना, मगर हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि नियर बाय जो भी केंद्र है उसे ले लिया जाए। इसी तरह से आपका यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी जो है, कैपिटल जी जो है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेलरेशन ऑफ है, सॉरी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, और जी जो है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका। तो ये आप इन दोनों को नहीं चेंज कर सकते, इनका आपस में कोई भी इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5.7 में देखा था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर से स्क्वायर, तो जो कैपिटल जी है दैट इज अ नेग्लिजिबल, उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि उसे हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो अगर ऊंचाई के साथ अगर हमने परिवर्तन देखना है कि आपका ऊंचाई के साथ क्या परिवर्तन है, तो मान लो कि हमने आर जो है आपका, आर कोई रेडियस है और उसकी ऊंचाई जो है वो 2R हो गई। अब R ना होके 2R हो गई, तो 2R होते ही वो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो गया, तो G कितना हो गया, 1/4 हो गया। इट्स अंडरस्टूड, आपका हाफ होता तो वो आपका 4 times हो जाएगा। अब R अपॉन 2 होगा तो R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 आपका मल्टीपल ऊपर चला जाएगा तो आपका G जो है वो क्या 4 times हो जाएगा। तो आपका जो है, अगर हम देखें कि कोई भी एच उसमें इंक्रीज कर, ये तो हमने सीधा आर को डबल कर दिया या 1/4 कर दिया। अगर हम लोग आपका जो है वो एक आर से थोड़ा सा ऊंचाई ऊपर लेते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस जो है वो आर आपका ग्रेविटेशनल एट पर्टिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि रेडियस पहले ही था और अब ऊंचाई एच पे उसको बढ़ गया है। तो ये आपका पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशंस यहाँ दिया गया है, उसे सॉल्व किया गया है। तो हमने क्या फाइंड किया इन इक्वेशन नंबर 5.10 में कि जी एच ग्रेविटेशनल एट हाइट एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 2 एच अपॉन आर। तो जी तो आपके पास 9.8 है ही है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज है. और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो वो किसी ना किसी चीज से पर्टिकुलरली डिवाइड हो रहा है. तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग रहा है कि ये आपका कम होता जा रहा है. चाहे इसमें बहुत, तभी तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि बहुत कम ऊंचाई में इसका बहुत कम आपको फील होगा. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तब आपका इसको फील होगा कि हाँ इसमें फर्क पुल है, मगर ज़्यादा आपका फर्क नहीं होता है. तो आप देखिएगा कि ये देखो इन्होंने लिखा हुआ वायुमंडल 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, हम उस ऊंचाई पर जी का मान निकालते हैं. तो पृथ्वी की त्रिज्या स्टैंडर्डाइज है, आपका जी का मान आपका स्टैंडर्डाइज है, आपका 10 किलोमीटर जो आपके स्टैंडर्डाइज है. तो ये आपका सॉल्व करके 9.8 से क्या हो गया, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गया. ये मैंने आपको उदाहरण 5.2 बताया है जो कि आपकी बुक में सामने है. आप इसे देखिए कि किस तरह से ऊंचाई पे बढ़ने से हमारा जो है वो जी जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है, मगर बहुत कम फ्लक्चुएशंस हुई हैं. मगर ये हम कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ आपका जो है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ आपका जो ग्रेविटेशनल त्वरण है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम होता है. इसी तरह से आप गहराई के साथ जी में परिवर्तन देखेंगे. तो अभी हमने क्या किया था, आर प्लस एच किया था, क्योंकि अब हमने हाइट ली थी तो जो आर त्रिज्या से उससे ऊपर की बात कर रहे थे. अब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर की ओर चल रहे हैं, पृथ्वी के अंदर की तरफ चल रहे हैं. तो मान लेते हैं कि हम किसी डिस्टेंस डी पे अंदर को जाते हैं, तो आपका जो रेडियस हो गया वो क्या हो जाएगा, अब आर माइनस डी. आप देखिए 5.11 पे जो जी डी है, आपका जी एट पर्टिकुलर डेप्थ दैट इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है. और आप जब इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन आप देखिए 5.12 पे जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर. तो यहाँ पे आपने फिर से देखा कि जैसे जैसे आपका वो हो रहा है तो आपका कुछ जो है वो माइनस हो रहा है, जी से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है. और वो फिर जैसे भी है, आपका अगर फ्रैक्शंस में भी माइनस हो रहा है तो आपका चाहे थोड़ा ही कम होता है मगर वहाँ पे आपका फिर से कम होता है. तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो ये है कि हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं 5.9 और 5.12 से कि आपका जो जी का मान है वो ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ ही घटता है. नो डाउट कि ये आपका घटना जो है वो बहुत कम घटता है, मगर ये आपका वहाँ पे कम होता है. तीसरा हम लोग बात करेंगे कि अक्षांश का के साथ परिवर्तन जी में कैसे कैसे होता है. लैटिट्यूड, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसके कारण पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक कण बढ़ते. आप देखिए ये तो सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है और जो पृथ्वी है वो अपने सूर्य के गिर्द भी घूम रही है. तो ऐसे हमें लगता है क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीथिंग मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी पोजीशन का चेंज नहीं फील होता. मगर अगर हम लोग इस फिजिक्स की टर्म में देखें तो वी ऑल आर मूविंग, सब मूविंग है, देयर इज नथिंग कॉन्स्टेंट, कुछ भी विराम अवस्था में नहीं है. हमारी हम लोग हमारी बिल्डिंगें हमारी सड़कें हमारा समुद्र हर चीज मूवमेंट में है. क्यों? क्योंकि पृथ्वी मूवमेंट में है, वो अपने अक्ष के गिर्द घूम रही है. इसी कारण पृथ्वी की सतह पे प्रत्येक कण जो है वो आपकी वर्तुल गति करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. और गुरुत्वीय बल के अगर ये गुरुत्वीय बल की उपस्थित नहीं होता तो ये अपनी जो हम लोग एक किसी एक अट्रैक्शन की वजह से बंधे हुए एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, हम वहाँ से छिटक के दूर दूर जा गिरते. जैसे कि आपने देखा है कि चंद्रमा पे कोई फोर्स नहीं है तो वहाँ पे आप मतलब कि कहीं भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं, आप वहाँ पे रोम करते रहते हैं. तो ये जो आपका कण वृद्धि गति में बनाए रहता है इसे हम अभिकेंद्रक बल कहते हैं. और जो आपका कोण है उस कोण को अगर हम देखते हैं तो जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5.13. और इस इक्वेशन 5.13 से हमें पता लगता है कि जो आपका जो लैटिट्यूड है उसका भी इस पे इम्पैक्ट आता है. अब आप देखिए कि अगर आपका पर्टिकुलर कहीं कोई ऐसी पोजीशन कि आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए तो आर आपका माइनस डी, डी कितना हो गया आर के इक्वल हो गया, तो आर माइनस आर आपका जीरो हो गया. इन डैट पर्टिकुलर जो है वो आपका केंद्र पे आपकी जो है वो जी जो है वो जीरो होता है, और आपका जो ध्रुवों पे है दैट इज अ जी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवों पर ये घटकर शून्य हो जाता है क्योंकि आपका बिल्कुल इस पे आ जाएगा. और जब हम लोग अक्षांश के साथ परिवर्तन के सूत्र को करते हैं तो ये दर्शाएगा आपका जो मान है दैट इज अ जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, जिसमें ओमेगा आपका पृथ्वी का कोणीय वेग है और आर इसकी त्रिज्या है. तो आपका ध्रुवों के लिए लैम्डा 90 डिग्री है, इसलिए ध्रुवों पे जी लैम्डा इज इक्वल टू जी, मतलब कि आपका ध्रुवों पे वो आपका बराबर रहेगा. अब हम लोग बात करेंगे जब वो है आपका भार और द्रव्यमान की बात करेंगे हम. तो भार और द्रव्यमान जब हम बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग भार जिसे कहते हैं उसी को द्रव्यमान कह, द्रव्यमान को ही हम लोग भार मान लेते हैं, मगर एग्जैक्टली मास एंड वेट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, वो दोनों एक चीज नहीं है. मास को हम किलोग्राम में नापते हैं जबकि भार को हम न्यूटन्स में मापते हैं. भार जो है आपका वो आपका दैट इज अ पुल, जिस पुल से पृथ्वी उस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है दैट इज नोन एज द वेट. अगर हम बात करते हैं वेट की तो वह बल जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है उसे उसका भार कहते हैं. अगर कोई भी किसी भी द्रव्यमान की वस्तु है तो जिस फोर्स से पृथ्वी उसे खींच रही है उसे हम उसका भार कहते हैं. जबकि हम लोग जो हमारा द्रव्यमान है, जो हमारी बॉडी का द्रव्यमान है, हम उसे ही अपना भार मान लेते हैं. एक्चुअली में वी आर मास एंड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज अ कि हमारे इसमें कितना द्रव्यमान है, कितना मटीरियल है. और जब हम लोग ये बात करेंगे जब हम तोलते हैं तो वो हम तोलते हैं दैट इज कि ग्रेविटेशनल पुल कितना हमें अट्रैक्ट कर रहा है. तो F इज गिवन आए एम जी, एम इज द मास इंटू जी. तो अगर मेरा मास 20 किलो है तो जो मेरा भार होगा दैट विल बी एम इंटू जी, 20 × 9.8 मीटर पर स्क्वायर एंड दैट विल बी द न्यूटन. तो आप अप्रोक्स इसमें अगर लेते हैं तो 9.8 को अगर हम ले लें तो 10 × 20 मीन्स कि आपका 200 जो आपका न्यूटन उसमें आपका वेट होगा. तो आपका यहाँ पे हम लोग आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लेमन लैंग्वेज में चाहे कुछ भी कहते हैं कि भार और द्रव्यमान को एक जैसा ले लेते हैं, और इस तरह से भी ले लेते हैं क्योंकि आपका जो भार है वो ऑलमोस्ट पृथ्वी पर एक जैसा है. हालांकि आपका हमने बात करी जी की कि वो कुछ ऊंचाई पे, कुछ गहराई पे, लैटिट्यूड पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर वो वेरिएशन इतनी कम होती है कि हम उसे नेग्लिजिबल मान के इक्वल मान लेते हैं. तो हमारा वेट भी सेम होता है, तो हम लेमन लैंग्वेज में उसे करते हैं यूज़ तो वो आपका चलता है. बट इन जनरल अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो आपका जो है जी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पर भार भी बदलता है. जबकि आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, आपका जो बॉडी में क्या मैटर है, मान लो आपने कोई 2 किलो की गेंद आपके पास है मेटल की, तो वो मेटल का जो आपका मास है 2 किलो वो चेंज नहीं होगा, मगर क्योंकि जी चेंज हो रहा है तो एफ इज इक्वल टू एम जी आपका, तो आपका जो वेट है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि जी चेंज हो रहा है मगर एम चेंज नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भार भी बदलता है. ध्रुवों पर भार का मान अधिकतम होगा जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या का मान ध्रुवों पर न्यूनतम और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है. यद्यपि किसी वस्तु का द्रव्यमान अचर होता है और द्रव्यमान वस्तु का नेच गुणधर्म भी है, इसीलिए आप उसको कभी भी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कहीं भी कांस्टेंट होता है, मास आपका थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे, धन्यवाद।